आदेश महामंत्र का प्रचार शॉर्ट में लिखते जाइए, महामंत्र का प्रचार। आप सेम ग्रुप से हैं? भक्ति की स्थापना करना, भक्ति स्थापना। माइक है, अगर माइक पर बोलिए तो सबको सुनाई देगा। यस, नेक्स्ट गुरु से
अपने आचरण से भक्ति करना सिखाया और बिना पात्रता और बिना सोचे समझे सबको जीव सभी जीव को हरे
हरे को भक्ति प्रदान करना। भक्ति प्रदान करना लिखा उसके आगे हरे को लिखे सभी को
भक्ति स्थापना करना
सभी तो सभी को प्रदान नहीं करना। ऐसा हो सकता है भक्ति को सबको ना प्रदान किया जाए, महाप्रभु ने सबको लिए पात्र पात्र न देखी। और कोई जीव दया और हरे नाम में रुचि महामंत्र का प्रचार है ना। पहला वो क्या लिखा वो हरे नाम में हो गया, ठीक है। जीव दया, जीव पर दया करना, यस बहुत अच्छा। हाँ जी, आपका उसे ग्रुप में अलग ग्रुप में है कि एक एक ग्रुप में? हाँ जी, एक ग्रुप से एक ही बोलेंगे। गोलोक धन पान क्या है? गोलोक का धन
हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन।
गोलोक का धन क्या है? हरि नाम का प्रचार। जो आगे हो पॉइंट को मत बोलिए, कोई दूसरे नए पॉइंट हो तो कहिए। सही जवाब है कि ये आ रहा था पीछे दिखा। भगवान से संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना। ओके, दूसरे कोई ग्रुप के रह गए जिन ग्रुप में नहीं बोला, भगवान का भजन करना। भक्ति में आया नहीं, कोई पॉइंट आया वहाँ पे नहीं आया, नहीं आया तो लिख सकते। और कोई ग्रुप रह गए जिन्होंने लेकर नहीं बोला आपसे ग्रुप? हाँ, सही परोपकार, सही परोपकार से खिलाया। हाँ जी, जीव के स्वरूप की पहचान। हाँ जी, क्या अलग ग्रुप से हैं कि हो गए एक ग्रुप? कौन से ग्रुप है?
मुझे कल में नहीं याद नहीं है।
अच्छा, फिर एक ग्रुप की जिन्होंने किया था उनसे चर्चा करेंगे। ऐसे कोई जो ग्रुप में थे अभी तक नहीं बोला, कहाँ कर लो आप जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रचार करें। रोज यात्रा कुछ कहें माइक अगर किसी के पास हो तो पास करते रहा करिए, कोई दूसरा कह रहा है। हाँ जी,
जीव को भगवत धाम वापस जाने के लिए भक्ति कैसे करनी है?
जीव को भगवत धाम जाने के लिए भक्ति कैसे करनी है? उसमें है या नहीं है पॉइंट? मतलब भगवत कैसे
भक्ति प्रचार, मतलब भगवान ने सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने कि जीव को कैसे भक्ति करके वापस
ठीक है अपने स्थान को, जीव को स्थान में वापस जाओ, अपने स्वरूप में स्थित हो। और किसी का कोई रह गया पॉइंट जिन्होंने चर्चा की है कि आप लोगों ने? अब सारे ग्रुप्स में से अगर आप लोग ये जो पॉइंट्स देख रहे हैं इसके अलावा कोई एक पॉइंट आपको लगता है, कोई इसी पॉइंट को अलग तरह से घुमा के नहीं, कोई पॉइंट आपको लगता है जो इसमें नहीं आया आप लोगों ने चर्चा की थी उसको? यस मैम, थोड़ा माइक दीजिए, बस सुनाई नहीं दे रहा वहां से। जारे देखो तारे करो कृष्ण उपदेश, भगवान के उपदेश का प्रचार किया, वही कह रहे हैं भगवान का नहीं लिखा, कृष्ण उपदेश का प्रचार, कृष्ण उपदेश का प्रचार। हाँ जी, देखिए
सब प्रचार करें, सब प्रचारक हैं कृष्ण देव का।
कृष्ण संदेश का प्रचार हरिनाम शरणागति जी सर शरणागति
संकीर्तन करना भक्तों के संग रहकर भक्ति
संकीर्तन करना साथ में रहकर भक्तों के संग में रहकर कीर्तन करना बहुत अच्छा। देखिए और कोई पॉइंट ऐसे भी यहाँ नहीं है
कलयुग के युग धर्म का प्रचार करना
हरिनाम प्रचार पहले ही है हरिनाम प्रचार करना ऐसे पॉइंट बताइए जो यहाँ नहीं है
अपने पार्षदों द्वारा भगवान के मंदिरों की स्थापना करवाना उसका उद्धार करना चाहिए और दूसरा अपना एक वचन देना हमें भक्ति की वो परंपरा को देने के लिए कुछ मूल को समझे चीज को साहित्य का
ओके मंदिरों की स्थापना और साहित्य का प्रकाशन
माधुर्य भाव में भक्ति जो सर्वोच्च भाव है उस भाव में भक्ति करना सीखा है और
भगवान
और वो लोग वृंदावन के बारे में
हाँ वो लोग के बारे में ज्ञान दिया ये किया उद्देश्य ये था अपना उद्देश्य की चर्चा करें ये सब वैष्णव शिष्टाचार के संख्या में बहुत अच्छा वैष्णव शिष्टाचार पापी को नष्ट करने नहीं आए थे बाकी अन्य अवतारों में पापियों को मारा इसमें पाप को मारा इसमें कौन से असुर को मारा महाप्रभु ने वैसे बाहर किसी को मारा क्यों नहीं मारा एक आध कोई याद है नहीं याद कीजिए मारा ही नहीं तो याद कैसे आएगा ठीक है तो इतने काफी हैं प्रभु जी आखिरी बस इसके बाद नहीं लगे क्योंकि हमें चर्चा और करनी है जी अच्छी उनके भेदा भेद या सही वैष्णव सिद्धांत स्थापित करना बहुत अच्छा ओके अब हम लोग चर्चा करेंगे तो ये थोड़ा सा इन पर चर्चा करेंगे थोड़ा बोर्ड घुमाएंगे तो दिखाई देगा कौन कौन से पॉइंट है थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में यस बहुत अच्छा सिद्धांत की स्थापना तो महाप्रभु के आने का अभी ये जो सारे अर्थ इसमें सही है महाप्रभु के आने का मूल उद्देश्य था जीवों को अपने धाम वापस ले जाना क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण आए श्री कृष्ण ने वापस जाने का मार्ग दिया क्या मार्ग दिया सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ और फिर ये कहकर कृष्ण चले गए वापस अपने धाम पहुंचे ही थे घूम कर देखा तो कोई भक्ति नहीं कर रहा कोई सर्वधर्मान् परित्यज्य नहीं कर रहा तो फिर कृष्ण ने क्या सोचा कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा उपदेश तो दे दिया लेकिन अब इनको कलयुग के लोगों को सिखाना भी पड़ेगा कि उद्देश्य अपने जीवन में कैसे पालन करना है तो फिर से वो आए भक्त के रूप में और जो चीज उन्होंने कही थी सर्वधर्मान् परित्यज्य उसको अपने जीवन में करके दिखाया महाप्रभु ने एक भक्त का रूप इसीलिए लिया कि जो समर्पण का भाव अनिवार्य है भक्ति के लिए उस समर्पण के भाव को उन्होंने अपने जीवन में दिखलाया आचरण करके दिखलाया इसीलिए महाप्रभु ने जीवों को यहाँ से वापस जाने का मार्ग सशक्त करने के लिए वे यहाँ पर आए और उसके लिए उन्होंने ये सारी चीजें की महामंत्र का प्रचार किया जैसे महामंत्र का प्रचार ये महामंत्र का प्रचार क्यों किया महाप्रभु ने क्योंकि ये युग धर्म है युग धर्म है इसके द्वारा ही केवल जैसे कलि संकरण उपनिषद में लिखा है कि ये जो इति शोरशिकम नाम नाम कली कलमश नाशनम कली के कलमश का नाश करने के लिए महामंत्र बना है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं कि अन्य भी तो मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके भागवत में पहले पहले लिखा हुआ है आप भागवतम को प्रमाण मानते हो और सबसे पहले आपके भागवतम में क्या लिखा हुआ है ओम नमो भगवते प्रारंभ है फिर आप वो मंत्र का जप क्यों नहीं करते वो भी तो भगवान का नाम है वासुदेव का नाम है और आपके अमल पुराण जो आप जिसको प्रमाण मानते हो, हर चीज का प्रमाण देने के लिए भागवत में लिखा है, कहते हैं ना, तो फिर ये क्यों नहीं कहते भागवत में महामंत्र कहाँ लिखा है? हरे कृष्ण महामंत्र लिखा श्लोकों में, आप कलयुग में प्रभु का भी बहुत जगह लिखा है, श्लोकों में कहीं शिवदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया? तो फिर एक और इतना स्पष्ट उन्होंने वर्णन कर दिया ओम नमो भगवते, पहला ही प्रारंभ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, तो फिर हम लोग उसको क्यों नहीं जप करते? क्या वो मंत्र नहीं है या कोई और मंत्र कृष्ण के नाम के, श्री कृष्णम शरणम मम, क्या वो मंत्र नहीं है? क्या आप कह रहे हैं सही बात तो कह रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूं, क्या आपका आश्रय मैंने लिया है? तो मंत्र में क्या गलती है? कोई हम देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे, हम तो स्पष्ट कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो फिर केवल महामंत्र क्यों? ये हरे कृष्ण मंत्र भैया, इसके इससे और भी कई ऐसे मंत्र दूसरे दूसरे आ गए हैं। माँ प्रभुपाद ने एक स्थान पर कहा है कि ये जो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री पंचतत्व मंत्र है, ये महामंत्र से हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो फिर हम वो क्यों नहीं जपते? अगर हम कहें कलयुग के लिए जपना है, महाप्रभु तो कलयुग में आए, आप उनको भगवान मानते हो, फिर भी आप नहीं जपते हो, जब वही करते हो हरे कृष्णा। तो ऐसे अगर कोई लोग आपको प्रश्न करें जो गलत नहीं है ना, ये सारे मंत्र सही हैं, और कई लोग अलग अलग मंत्र करते हैं, जैसे जगन्नाथ इत्यादि में वो लोग करते हैं भज गौर राधेश्याम हरे कृष्णा हरे राम, भज पिताई गौर राधेश्याम हरे कृष्णा हरे राम, ऐसे मंत्र। तो ऐसे कई लोगों ने मंत्र बनाए हुए हैं या मंत्र जप कर रहे हैं। तो अब हमारा प्रश्न है केवल हरि नाम ही क्यों? ठीक है, देवी देवताओं को हम लोग बात ही नहीं कर रहे थे, हम गणेश जी का नहीं करेंगे, जरूर तो छोड़ ही दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं जो आपके मां, और हम कहते ध्रुव महाराज ने उसी मंत्र को जप करके छह महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। आप लोग तो छह महीने से ज्यादा हरे कृष्ण का महामंत्र कर रहे हैं, आशा है भगवान तो आए किस नाम है, इससे अच्छा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हैं। यस, अब बताइए। महाप्रभु ने स्वयं मंत्र दिया, पहला कारण बहुत अच्छा। तो महाप्रभु ने मंत्र दिया, हालांकि पंचतत्व मंत्र हजार गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन जिनका ये मंत्र है उन्होंने हमें कहा कि आप महामंत्र का जप कीजिए। प्रभु गोस्वामी इसको समझाते हैं कि जितने भी अन्य, और महाप्रभु ने मंत्र महामंत्र लिया केवल नहीं, महाप्रभु ने कई नामों का उच्चारण किया, जब बहुत भाव विभोर हो जाते थे तो दाम गोविंद दामोदर माँ धरती चिल्लाया करते थे, तो और भी कई मंत्रों का लिया। तो फिर जब उन्होंने अन्य मंत्रों को भी लिया तो हमें क्यों नहीं अन्य मंत्र लेना है? प्रभु गोस्वामी समझाते हैं कि महाप्रभु ने कई नामों का उच्चारण किया अपने आनंद के लिए, लेकिन लोगों को कृष्ण भक्ति में निमग्न करने के लिए हरे कृष्ण इति आख्य कहा, बहुत स्पष्ट कहा है कि अपने आनंद के लिए महाप्रभु ने बहुत से नाम लिए, लेकिन लोगों को कृष्ण भक्ति में डुबाने के लिए, निमग्न करने के लिए उन्होंने कहा हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करना चाहिए, हरे कृष्ण इति आख्य कहा, ऐसा महाप्रभु ने कहा। तो बहुत अच्छा पहला उत्तर सही है कि क्योंकि महाप्रभु ने उस मंत्र को दिया। और कोई बताइए। यस प्रभु, तो वो तो भगवान ने कह दिया, लेकिन इस युग में दूसरा क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं मंत्र में? इसे ही आपने, अगर कोई पूछे क्यों, ठीक है आपने कह दिया इस युग, तो वो क्यों नहीं दिया? वो दे देते। हाँ जी,
और मंत्रों में जैसे क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ता है, और मंत्र है और ये महामंत्र है जिसमें हम कहीं पे भी कभी भी ले सकते हैं।
और मंत्रों में शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है, और ये मंत्र हम कहीं भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्या ये मंत्र उपनिषदों का नहीं है?
तुम्हारा शुद्ध किया है
तो कोई भी मंत्र शुद्ध कर सकते हैं, बाकी मंत्र क्यों नहीं शुद्ध करते? अगर आप कह रहे हो कि ये मंत्र उन्होंने शुद्ध कर दिया गुरु ने, तो बाकी मंत्र गुरु के अंदर शक्ति नहीं शुद्ध करने की, बाकी शुद्ध करके दे सकते हैं। ऐसी चीजें आप बाहर बोलोगे तो लोग बोलेंगे फिर तो आप अपने गुरु को मानो, कृष्ण की भक्ति ना करो। हमारा आप ये मान लीजिए आप लोग जो सब कह रहे हैं सही है, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो केवल ये कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे बाहर, ये बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखने का प्रयास। हाँ जी, ध्रुव महाराज को ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके स्वयं कृष्ण मिल गए, प्रेम तो मिलना ही मिलना है ना। आप कैसे कह सकते हो कि केवल महामंत्र से मिलेगा? ध्रुव महाराज ने नहीं किया, उनको प्रेम नहीं मिला, उनको केवल भगवान ने दर्शन किए कर उनको प्रेम नहीं दूंगा, तुमने हरे कृष्ण महामंत्र जब नहीं किया, प्रेम मिला कि नहीं मिला? देखते भावा के ऊपर हो गए आंखों से आंसू, वो किस स्थिति पर पहुंच गए केवल भगवान के दर्शन से। तो कैसे कह सकते हो कि आप दूसरे मंत्र से प्रेम नहीं मिलता है? बताइए, आपने भी कहा। यस, पूछिए माता जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, इसमें सेवा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है, तो बाकी मंत्रों में भी हो सकती है? कोई मंत्र में भगवान से प्रार्थना, श्री कृष्ण शरणम ममा, ये क्या है? हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ, गलत है? अच्छा, राधा रानी से प्रे करते, तो ऐसे कोई राधा और कृष्ण के मंत्र को ले सकते हैं? नहीं। कलयुग में तो ये दूसरा कारण है कि उपनिषदों में कलि संतरण उपनिषद में ये दिया गया है। तो जब हम कहते हैं कि अगर इस मंत्र को, इसी मंत्र को क्यों वासुदेव, सब मंत्र हैं, आपको बहुत स्पष्ट समझाना है लोगों को कि हम ये नहीं कहते कि अन्य कोई मंत्र नहीं है, अन्य मंत्र में शुद्धता नहीं है, अन्य मंत्र में प्रेम देने की शक्ति नहीं है, ऐसा मत कहिए। सब सारे मंत्रों में शक्ति है, लेकिन जब आप दवाई की दुकान पे जाते हो, आपको सर दर्द है, तो क्या आप हार्ट अटैक की दवाई लेते हो? क्योंकि सारी दवाई है, कोई भी ले लो क्या फर्क पड़ता है? तो सारे मंत्र है और सारे मंत्रों में शक्ति है, जैसे हर दवाई में शक्ति होती है, लेकिन आपकी जो बीमारी है आपको केवल उतनी चाहिए। आपको हार्ट अटैक की दवाई की आवश्यकता नहीं, ब्लड प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता किसकी है? सर दर्द की, तो आप उसको लोगे। तो इसी तरह इस युग के लिए जो मंत्र है, भले वो सारे मंत्र शक्तिशाली, तो ऐसा आप लोग मत कहिएगा कि उसमें प्रेम नहीं दे सकते, शुद्धता नहीं है, सेवा नहीं है, ये सब गलत हो जाएगा। सारे मंत्रों में शक्ति है, सारे मंत्र शक्तिशाली हैं, प्रमाणिक हैं, कृष्ण के हैं, लेकिन हमारी बीमारी जो इस कलयुग की है, उसके लिए हमें सर दर्द के लिए केवल कौन सी दवाई देते हैं? चलिए, हाँ, क्रोसिन, क्रोसिन टाइम नहीं मिलेगा, पैरासिटामोल, चलो जो भी है, तो हमें जो चाहिए हमें उतना ही लेना है, हमें जरूरत नहीं है हार्ट अटैक दवाई लेने की। इसी तरह इस कलयुग की जो बीमारी है, कलि संतरण उपनिषद में कहा गया है कि इस कलयुग की इति षोडश गमनागमना कलि कल्मश नाशनम, कलि के तो उपनिषदों का हम जब भी कहते हैं कुछ बात, तो हमें गुरु साधु शास्त्र के द्वारा कहनी चाहिए, तो उपनिषदों में कहा गया है कलि संतरण उपनिषद में, इसलिए इस महामंत्र को ले। ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़े तो हमने एक ही चर्चा की है, हम लोग चर्चा बहुत करते हैं यहाँ पर, है बंद करना चाहिए, चलो पांचवा मंत्र शुरू कर देते हैं। एक और एक चीज देखनी है, आपको जाने का समय कैसे नहीं है? हाँ, एक मिनट। अच्छा, अभी मंत्र पाठ शुरू नहीं कर रहे थे, पैसे इंतजार कर रहे थे, बोलो समझ गए, आप नहीं समझ पाए। तो प्रेम देना, तो महाप्रभु आए, इसको आप जल्दी जल्दी करेंगे बाकी से, क्योंकि महामंत्र जरूरी था हमें चर्चा करना, आप लोगों को समझना कि क्यों महामंत्र, और भी कारण है, खैर उस पर विस्तार में नहीं आए। तो महाप्रभु ने दिए पहला हमारे लिए कारण, महाप्रभु ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र, और क्यों कहा? क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है, इस कलयुग में इसको करना चाहिए, इसको देना चाहिए। जितने आचार्य हैं उन्होंने हमें दिया ये मंत्र, इसीलिए हम इस मंत्र का गुरु साधु शास्त्र हम लोग उस मंत्र का उच्चारण इसीलिए करते हैं। ठीक है, प्रेम देना, तो महाप्रभु आए उस चीज को देने के लिए जो किसी अवतार ने नहीं दिया और अवतार दे नहीं सकते, स्वयं कृष्ण को आना पड़ता है। तो जब कृष्ण आए तो उन्होंने क्यों नहीं दिया? थोड़े समय पहले तो कृष्ण आए थे ना, तो क्यों महाप्रभु ने आकर ही दिया वो अनर्थिका, क्यों कृष्ण ने नहीं दिया? अब ये प्रश्न आता है। हम कहते हैं ठीक है अपने अवतार ठीक है भूल जाए, रामचंद्र जी नरसिंह देव, नरसिंह देव ने तो बहुत प्रेम दिया, लेकिन चलिए मान लीजिए नहीं, तो महाप्रभु को क्यों आना पड़ा? महाकृष्ण पहले आए थे अभी जस्ट कृष्ण भक्त के रूप में है। बहुत अच्छा, आप सुनते हैं ध्यान से। तो भगवान शास्त्रों में कहा गया फिर गदा की तरह चित्त च भक्ति योगा, भक्ति तो दे देते, मुक्ति दे देते भगवान सबको, लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जिसको भक्ति दे देते हैं उसके हाथ भगवान बिक जाते हैं। आप लोगों ने सुना है तुलसी दल मात्र जलेगा छिड़के नवा, आप थोड़ा सा एक दो तुलसी दल और थोड़ा सा जल अगर भगवान को अर्पण, विक्रंती बिक जाते हैं भगवान भक्त वत्सल, वो जो भगवान है वो आपके हाथों बिक जाते हैं। इसीलिए भक्ति कम देते हैं भगवान, क्योंकि भक्ति दे दी तो उनको फिर दरवाजे पर आपके खड़ा होना पड़ेगा। भक्ति को किसी को भी दे देते हैं, होते रहो कोई तरह तकलीफ नहीं, लेकिन भक्ति कम देते। ठीक है, आगे चले, इन सब पर चर्चा करनी है, जरूरत नहीं है ना बाकी चीजें। तो वहां पर प्रेम देने आए थे, भक्ति की स्थापना करने आए थे। भगवान धर्म की स्थापना करते हैं और जो भक्त हैं उस धर्म का प्रचार करते हैं। हम लोग धर्म की स्थापना नहीं कर सकते। धर्म क्या है? धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म संस्थापना खाए संभवामी युगे युगे। तो भगवान बार बार आते हैं किस लिए? धर्म की स्थापना करने के लिए, और उसका प्रचार करते हैं आचार्यगण, और उसको हम लोग सुनकर उनके मार्ग का पालन करके हम फिर भक्ति में आगे बढ़ते हैं या प्रचार करते हैं। तो हम धर्म की स्थापना नहीं करते, इसलिए भगवान धर्म की स्थापना, तो भक्ति को स्थापित करने आए, सभी को प्रदान करने आए। मात्र अपात्र ना देखी, महाप्रभु ने कुछ नहीं देखा, जिसको जो था उसको प्रेम दे दिया। ये कृष्ण नहीं कर सके, कृष्ण ने कंडीशन रखी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, पहले मेरी शरण में आओ तब मुक्त करूंगा। महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं रखी। महाप्रभु ने कैसे प्रचार किया? चैतन्य महाप्रभु ने पहला प्रचार किया साक्षात, साक्षात अर्थात अगर उनको कोई देख लेता था महाप्रभु को, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता। महाप्रभु कहीं जा रहे थे, हजारों लोग आ गए, पूरा का पूरा गांव आ गया उनको देखने के लिए, सबको कृष्ण प्रेम मिल गया। फिर कोई लोग आए होते थे दूसरे गांव से, उन्होंने महाप्रभु को देखा, उनको कृष्ण प्रेम मिल गया, और वो जब अपने गांव गए उनको देखकर लोगों को कृष्ण प्रेम मिल गया। देखिए ये प्रचार का माध्यम था महाप्रभु का, तो ये साक्षात। दूसरा प्रचार उन्होंने किया आवेश, आवेश के रूप में, अर्थात उन्होंने कुछ लोगों में अपने आवेश को स्थापित करा है। और तीसरा उन्होंने प्रचार किया शक्ति, शक्ति देकर कुछ लोगों, तो आवेश हुआ साक्षात हुआ आवेश साक्षात मतलब सीधा आवेश मतलब प्रवेश किया कहीं के लिए लोगों में, जैसे कि ब्रह्मचारी थे उनमें उन्होंने प्रवेश किया, महाप्रभु उसमें हृदय में थे, लेकिन शिवानंद सेन को लगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है झूठ है, तो वो मिलने नहीं गए। वो शुक्लांगर ब्रह्मचारी थे उनके बाहर खड़े रहे, वो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा कि अगर महाप्रभु इनके हृदय में हैं तो फिर मैं मुझे बिना बुलाए, दो चीजें उन्होंने कही कि मुझे मेरे बिना जाए वो मुझे बुलाने चाहिए, और मैं जिस मंत्र का उच्चारण करता हूँ उस मंत्र को वो कहने चाहिए। अभी इन्होंने इतना ही सोचा था, मन में किसी से नहीं कहा, दूर खड़े थे, लोग भागते हुए आए, कौन है शिवानंद, कौन है शिवानंद, बुला रहे हैं आपको, चलो। तो फिर बुला रहे, वहां गए तो शिवा पहला चीज हो गया। और फिर उन्होंने तुरंत कहा, शिवानंद तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं यहाँ पर हूँ, तो देखो तुम ये गोपाल मंत्र का उच्चारण करते। तो शिवानंद से एकदम हैरान हो गए कि अभी तुमने केवल सोचा था, इनको पता कैसे चला। तो महाप्रभु ने किस तरह से आवेश किसी चीज में उन्होंने करा, ठीक है, ये कभी और महाप्रभु की लीलाओं की चर्चा करेंगे विस्तार से। तो प्रचार किया, जीव दया मतलब यही कि जीवों को सही दया क्या है। जैसे यहाँ सही परोपकार आपने कहीं पर लिखा है ना, वास्तविक परोपकार, तो वास्तविक परोपकार है जीव दया, जो महाप्रभु ने सिखलाई, संबंध स्थापित करवाया भगवान से, अपनी पहचान दी और कृष्ण के उपदेश का प्रचार करना सिखलाया। जारे देखा तारे वह कृष्ण उपदेश। और ये किसको दिया उन्होंने, किसी ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ ग्रहस्थ को उपदेश दिया। जब ये उपदेश दिया तो वो गृहस्थ ने जिनको दिया कि जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग गृहस्थ का प्रचार करना केवल ब्रह्मचारियों का काम है या सन्यासियों का काम। आप अपने गृहस्थ को कहा रहे कि जारे देखा तारे कहो, तो आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रचार करना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नहीं। अर्थ को शरणागति सिखलाई, संकीर्तन सिखलाया, जिसको श्रीदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। क्या वर्णन है, कृष्ण वर्णन तुषार कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध स। इन्होंने कहा महाप्रभु जब आएंगे तो वो क्या करेंगे, संकीर्तन, और संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो भगवान की पूजा करेंगे वो बुद्धिमान कहलाएंगे। और फिर मंदिरों की स्थापना अपने शिष्यों के साथ उन्होंने आगे करवाई, कृष्ण सदाचार और तत्व को दिया। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तत्व दिए गए, अद्वैत द्वैत द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत इत्यादि। तो उन सब में किसी में कहा गया कि भगवान और जीव एक हैं, अद्वैत, किसी में कहा गया दोनों अलग अलग हैं, ऐसे देखते हो आप आचार्यों का, द्वैत दोनों में भेद है। तो ऐसे अलग अलग सिद्धांतों को भगवान ने आकर सारा मिला दिया कि भेद भी है और अभेद भी है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, इसको महाप्रभु ने दिया। अब उसमें विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, अभी आएगा आप लोग भगवद गीता पढ़ेंगे जब नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें सारी चीजें विस्तार से समझाई जाए। तो अभी हमारी जिम्मेदारी देखिए, जिसमें आप लोग दूसरा भाग ने कहा था चर्चा कर कि आप लिखिएगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी। तो ये तो इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं, केवल लिखना है। तो आप जल्दी जल्दी बताइए हमारे क्या कर्तव्य है, अलग अलग ग्रुप से एक एक तुरंत जल्दी जल्दी समय बर्बाद किए बिना, माइक हो या ना हो आप बोल सकते हैं। पहला हमारी जिम्मेदारी है प्रचार करना, बहुत अच्छा, जो हमें मिला है वो दूसरों को देना, क्योंकि प्रचार ये सबसे बड़ा परोपकार है, ठीक है, प्रचार करना बहुत अच्छा। घर में रहकर भक्ति करना, मंदिर नहीं आना, मंदिर नहीं आना, आप कह रहे हैं सोशल जाए सुबह मंदिर आते हैं, घर में रहकर भक्ति करना। एक मिनट, आप अलग अलग ग्रुप वाले बोले, आप अलग ग्रुप से हैं, हरिनाम संकीर्तन करना काम है, घर में बाहर नगर संकीर्तन करते हो आप लोग। अब ये सब लिखते समय याद रखना कि हम करते हैं कि नहीं करते, केवल बोलना नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मनुष्यों में चार दोष हैं, तो बोलने वाला भूल जाता है मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी चार दोष हैं। हाँ, हम ये भी कह रहे थे मनुष्यों में चार दोष हैं। ऐसे तो कि प्रचार करना चाहिए, करना चाहिए, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बिल्कुल तो नहीं, हमने कह दिया बस प्रचार करना चाहिए। तो जो भी आप लिख रहे हैं उसमें करना चाहिए, ओके, काम रह गया। पहले खुद को स्थिर करना चाहिए, जन्म सार्थक परी कर परोपकार, खुद को अपने को स्थिर करना भक्ति से आचरण, इस तरह से कोई नहीं। आप कौन से बोलते, आप लोग बिल्कुल बोलते नहीं, आप एकदम आगे बैठकर आप लोग शांति से सुनते, अच्छी बात है, थोड़ा बोलना भी चाहिए, चढ़ा भी नहीं आती है भैया,
एसोसिएशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन
जो हाथ में है मेरा कैसे कैसे नहीं क्योंकि सब बोलने लगे तो सारा सिस्टम बिगड़ेगा जी
एसोसिएशन
बुक डिस्ट्रीब्यूशन
चैंटिंग
और डांसिंग एसोसिएशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया
इसके लिए अपने वो हैंडल दी बनना
महाप्रभु के समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था बाद में शुरू हुआ श्रीनिवास आचार्य इत्यादि ने पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी गई थी बैलगाड़ी में भर कर महाप्रभु के समय तो बुक्स थे नहीं लिखे बाद में गोस्वामी इत्यादि एसोसिएशन चैंटिंग और डांसिंग अच्छा हाँ नृत्य करना सिखाया बाकी किसी और काम में नहीं सिखाया ये जरूरी है तो हमें नृत्य करना चाहिए हम लोग करते हैं कि नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो कि नहीं यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन चैंटिंग और डांसिंग वेरी गुड हाँ जी
सभी मिलकर भक्ति करें
सभी मिलकर भक्ति करें अकेले अकेले नहीं करें एक साथ संग में और कौन से ग्रुप रह गए जो खाने ये स्थान
से आप किसी भी परिस्थिति में मतलब कुछ भी ऐसा जो हमें भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए
भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए और आप लोग ऐसे करते हो कि नहीं जो ज्यादा चिंता हो जाती है तो प्रभु जी क्या हो गया तीन दिन से मंदिर नहीं बहुत टेंशन तो मंदिर क्यों नहीं आ रहा है क्या हो गया बहुत बिजी बहुत टेंशन तो दुख में सुख में भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए हाँ जी योजनाएं बनानी चाहिए यस चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए बस 100 लोग आ रहे मंदिर में बहुत अच्छी बात है कोई चिंता की बात नहीं और न्यू ईयर के दिन तो 150 लोग आ गए थे फिनिश बढ़िया हमारा प्रचार सब बढ़िया है नहीं नई नई योजना बनाइए आज 100 लोग हैं अगले संडे 150 आने चाहिए उसके बाद 200 आने चाहिए आज भगवान से हमारे 500 लोग जुड़े हैं एक साल के अंदर 1000 हो जाने चाहिए कितना सरल है ना 500 लोग एक ग्रुप को जोड़ेंगे एक साल में एक व्यक्ति को 1000 लोग ऐसे ही हो गए यस और बताइए जिन्होंने नहीं बोले हैं उनका किस ग्रुप में से विधिन भाव से श्रवण करना चाहिए बहुत अच्छा करते हैं या नहीं नहीं करते तो डांट डांट के करवा भी देते हैं यस पीछे आप कौन से ग्रुप के थे आप ग्रुप में थे किसी का
सब भक्तों को
संकीर्तन लिख दिया हो ऐसे बताइए जो चीज नहीं लिखी हो लिखती हो आपके पास उसको रहने दीजिए ये एक सेकंड घर घर जाकर हरे नाम की महिमा दिखाई नहीं घर घर जाकर प्रचार कर घर घर जाने करना चाहिए नाम रूप ने आदेश दिया था किसको दिया था शुनु शुनु नित्यानंद शुनु हरिदास अमर आज्ञाय सर्वत्र करह प्रकाश प्रति भरे भरे निया करे भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गुरु कृष्ण शिक्षा महाप्रभु ने आदेश दिया था बहुत अच्छा कि सब घर घर में जाकर प्रचार करना चाहिए और तो रहने गुरु प्रभु जी इसमें एक ही तो मैं बोले गुरु किसी ने नहीं हो गया यहाँ तक ईश्वर मुझको वैष्णव सेवा करनी चाहिए आप करते हो कि नहीं कोशिश करें अच्छा वो आपने नहीं कहा कि भक्तों के अंदर नम्रता का भाव होना चाहिए मतलब हमारे अंदर है या नहीं करेगी ये भक्ति की बातें नहीं हो रही हमारी जिम्मेदारी क्या अभी इस समय जैसे हमें प्रचार करना है हमें अपने कार्य करने हमारे प्रभु महाप्रभु के आंदोलन में जिम्मेदारी एक चीज आप कह सकते हो कि गुणों को उत्पन्न करना केवल नम्र होना नहीं और भी सारे बहुत अच्छे गुणों को उत्पन्न करना प्रेम से भगवान की सेवा करना ओके सेवा प्रेममय सेवा ये हमारी जिम्मेदारी है यस लोगों को कृष्ण प्रसाद खिलाना और अगर कोई नहीं खाते हो तो उनके लिए डब्बे में इतना भेज देना कि 3 दिन तक उसको खा दे यस कृष्ण प्रसाद और कोई रह गए एक लास्ट एक दो पॉइंट केवल लेंगे अभी क्योंकि बहुत समय हो गया आज का विषय शुरू करना यस प्रभु ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम अटेंड करना बहुत अच्छा, ऐसे बताइए चीजें आप लोग ने सिद्धांत बताए कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जैसे प्रैक्टिकल चीज, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम अटेंड करना, ये नहीं सोचना कि अभी अभी तो महाराज आकर गए थे फिर से बुला दिया मंदिर में, होता है ना सर, बड़ी इच्छा होती है, फिर तो ऐसी इच्छा होती है बस केवल कथा सुनेंगे, तीन दिन कथा हो जाती है, चौथे दिन फिर बुलाया जाता है तो लगता है मैसेज देते हैं प्रभु जी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए था, क्या एकदम तुरंत नहीं होना चाहिए, आचार्यों के द्वारा दिए गए कार्यक्रम को बड़े सावधानी से पालन करना बहुत अच्छा। हाँ जी, वैष्णव अपराध से बचना बहुत अच्छा, अभी सब पे चर्चा करने जाएंगे तो तीन दिन यही हो गया, इसीलिए हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच। तो ये हो गया, अभी पांचवें श्लोक को हम लोग उच्चारण करेंगे हमारे विषय द्वारा ही। तन्ने जति तन्ने जति
तन्ने जति तन्ने जति
तदूरे तदुवन्ति चे
तदूरे तदुवन्ति चे
तदन्तरस्य सर्वस्य
तदन्तरस्य सर्वस्य
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।
अगर आप लोगों को इतने श्राप दे दिया तो प्रभु जी को निश्चय देते होंगे, देते ही होंगे, हंस हंस के देते हैं लेकिन देते हैं लगता है, लेकिन क्या करें प्रचार के लिए सब श्राप देने पड़ते हैं। हाँ तो ये अनुवाद इसका ये है, परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, आपके हिंदी में चलता है लिखा है चलते
चलते हैं
तो परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर है फिर भी वे सबके बाहर हैं। तो जो पिछले श्लोक पिछले मंत्र में वर्णन हुआ था, क्या वर्णन था पिछले मंत्र में, विषय क्या था पिछले मंत्र में जो वर्णन का चौथे का, जो लोगों का वर्णन तीसरे मंत्र में हुआ था वे लोग भगवान को क्यों नहीं समझ पाते और उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, महाभागवत का क्या दृष्टिकोण होता है, क्योंकि वो महाभागवत नहीं है तो महाभागवत कैसे देखता है उसी को आगे इस श्लोक में और इस मंत्र में बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग लिंक मत भूलिए कैसे हम चल रहे हैं, कौन बताएंगे शुरुआत से ईश स्तुति से तुरंत एक एक लाइन में क्या लिंक है अभी तक पांचवें मंत्र का, यस मान जी अगर कोई भाई दे दे तो बड़ा अच्छा होगा। तो तीसरे और फोर्थ का कनेक्शन क्या है, तो आप कहते हैं पालन नहीं करते उनका क्या होता है, फिर सडनली महाभारत महाभारत में कहाँ है क्या कनेक्शन, जो जो लोग तीसरे मंत्र में जिनका वर्णन है वो भगवान को क्यों नहीं समझ पाते ये चौथे मंत्र में बताया, क्योंकि वो उस दृष्टि से देखते नहीं महाभारत की दृष्टि से, इसलिए उसको समझिए उनको भूलिए। पहला है भगवान की पूर्णता का वर्णन किया गया, ये भी कहा गया कि जीव भी पूर्ण हो सकता है लेकिन जीव को पूर्णता के लिए जो चाहिए वो पहले मंत्र में बताया गया ईशावास्य सिद्धांत, और जो लोग उसका पालन करते हैं उनकी क्या गति होती है उसका दूसरे मंत्र में बताया गया, जो पालन नहीं करते हैं उसका तीसरे मंत्र में वर्णन किया गया, और जो लोग ऐसे रहते हैं असूया नाम के लोग का जो पालन नहीं कर रहे हैं तो वो लोग भगवान को क्यों नहीं समझ पाते हैं ये चौथे मंत्र में वर्णन किया, और क्योंकि उनका दृष्टिकोण महाभागवत की तरह नहीं है, तो महाभागवत का क्या दृष्टिकोण है क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि वो भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, हमने पढ़ा था चौथे में कि भागते भी मन की गति से भाग रहे हैं बहुत तेज है समझ में नहीं आता, तो अब उसी को आगे इस मंत्र में बताया गया है कि भगवान चलते हैं और नहीं चलते, बहुत दूर भी है लेकिन अत्यंत निकट भी है, सबके भीतर है सबके बाहर भी, इसके तात्पर्य को बड़ी चर्चा करें।
यहाँ पर
उनकी अचिंत शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारण या यदि कोई चल सकता है तो यह कहना कि वह नहीं चल सकता सब विरुद्ध होगा।
अच्छा, यहाँ जो कहा है कि भगवान की जो अचिंत शक्तियाँ हैं ये क्या प्रमाणित करती हैं? एक वाक्य प्रभुपाद ने कहा ना, फिर से पढ़िए उसको। भगवान की अचिंत शक्तियाँ,
भगवान की अचिंत शक्तियाँ सिद्ध करते हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते। साधारण क्या यदि
उससे पहले
यहाँ पर भगवान के कुछ दिव्य कार्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर दिए गए विरोधाभासी कथन भगवान की अचिंत शक्तियाँ सिद्ध करते हैं।
हाँ, तो जो विरोधाभास दिया गया है ये इसलिए है ये समझाने के लिए कि भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ हैं। अचिंत्य यानी हमारे चिंतन के परे है, तो इसलिए समझाने के लिए नहीं दिया गया कि भगवान का रूप नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये जो विरोधाभास है ये समझाने के लिए कि भगवान अचिंत्य शक्ति है। तो भगवान चल भी सकते हैं, इसी समय नहीं भी चलते, भागते हैं चल नहीं रहे, ऐसे सारे जो चीज़ें हैं कॉन्ट्रडिक्शंस कैन ओनली बी इन कृष्णा। हमारे में नहीं हो सकता। अभी आप लोग यहाँ पर हैं तो आप लोग घर पर भी हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान में हो सकता है, क्योंकि भगवान जब यहाँ आते हैं, कृष्ण यहाँ आते हैं, तो कैसे आते हैं? हम लोग कहते हैं कि काफ़ी समय में स्वयं कृष्ण आए यहाँ पर, अवतार नहीं स्वयं कृष्ण आए। कहा जाता है कि महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, या जब 5000 साल पहले स्वयं कृष्ण आए, अवतार नहीं, इनका विस्तार नहीं, स्वयं कृष्ण। तो जब वो यहाँ आए तो क्या गोलोक में ताला लगा कर आते? तो फिर स्वयं कृष्ण कैसे आए? तो फिर स्वयं कृष्ण नहीं बोलना चाहिए। या तो आप स्वयं कृष्ण मत बोलिए, और या तो ये मत बोलिए कि गोलोक के विस्तार। अगर स्वयं कृष्ण है तो उनको तो ताला लगा के आना पड़ेगा, और अगर उनके विस्तार आ रहे हैं तो फिर वो स्वयं कृष्ण नहीं है। शक्ति नहीं, कृष्ण स्वयं आए थे, शक्ति कहाँ आई थी? हम लोग कृष्ण की बात कर रहे हैं। हाँ, उनके विस्तार भी स्वयं कृष्ण है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि उनके विस्तार आए, कृष्ण नहीं आए। हाँ, वो बोर्ड है। हमारा प्रश्न इतना ही है कि स्वयं कृष्ण आए थे 5000 साल पहले, या उनके विस्तार आए थे? और अगर स्वयं कृष्ण आए तो गोलोक पे लॉक लगा था या नहीं? और अगर गोलोक पे लॉक नहीं लगा तो फिर उनके विस्तार आए, कृष्ण नहीं आए। बड़ा सरल है, समझ नहीं आ रही, कुछ गलत कह रहे हैं? अब आप लोग आगे कीजिए। यस, वो भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। नारदी ने सारे पानी कह लिया, भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए।
जिनको भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र अचिंत्य शक्तियों को विकसित करने का कार्य करता है। अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को समझ नहीं सकते, अतः हम तो केवल अपने ज्ञान की सीमित शक्ति के आधार पर भगवान की धारणा बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर मायावाद सिद्धांत को मानने वाले निविशेषवादी दार्शनिक भगवान के केवल निराकार कार्यकलापों को स्वीकार करते हैं और उनके साकार रूप को ठुकरा देते हैं। जो भगवान संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि वे साकार तथा निराकार दोनों हैं। भगवत नाम जानते हैं कि अचिंत्य शक्तियों के बिना परमेश्वर शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता।
तो भगवान, हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद हो, कि भगवान निराकार और साकार दोनों हैं। अगर कोई कहते हैं कि भगवान केवल निराकार हैं, और कोई कहता है कि भगवान केवल साकार है, वो भी गलत। तो भागवत सिद्धांत क्या है? भगवान दोनों है, साकार भी और निराकार भी। मतलब जैसे सूर्य होता है, हमने कल कहा था कि कल कहने के बाद भी मोबाइल बजेगा और आज बज गया है। भगवान हमारी वाणी को सत्य करते हैं, कम से कम इस बारे में, बाकी बार नहीं। तो भगवान निराकार भी और साकार कैसे हैं? सूर्य के उदाहरण से समझ, सूर्य का आकार है, जो सूर्य से प्रकाश निकलता है वो निराकार है। तो भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा भगवान कहते मैं ही उसका सोर्स उसका केंद्र उसका स्रोत। तो इसलिए भगवान निराकार भी है और साकार भी है। अगर हम कहेंगे केवल भगवान साकार है तो हम भगवान को सीमित कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि आप भगवान को आकार देकर भगवान को सीमित कर रहे हो, ये गलत है। उनका मानना क्या है, भगवान निराकार है, असीमित है। आप एक शरीर बता देते हो तो आपने सीमित कर दिया उनको। नहीं, भगवान के रूप नहीं हो सकता ये कहना भगवान को सीमित करना है कि भगवान के अंदर कुछ कमी है। भगवान की कमी नहीं हो सकती। अगर हमारे पास रूप है तो भगवान के पास रूप क्यों नहीं हो सकता। हमारे जैसे जो अंश है अंश के पास हो सकता है, लेकिन जो पूर्ण है उसके पास नहीं हो सकता, ये कहना गलत। अब कुछ चीजें हैं जैसे कहते हैं कि राजा होते हैं तो राजा के पास एक चीज नहीं होती, गरीबी। सभी तो राजा कहलाएगा तो गरीबी नहीं होती। अब आपको भगवान है तो सब कुछ होना चाहिए, गरीब भी होना चाहिए। वो गरीब भी बनते हैं, महाप्रभु के रूप में आया, भिक्षा मांगी ना, किया कि नहीं मान, भिक्षु बने, घर में जाके भिक्षा मांगी, भिक्ष भी बने, भिखारी भी बने। तो कृष्ण के पास कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सारी चीजों के स्वामी, इसलिए रूप क्यों नहीं हो सकता ये बात नहीं है। तो इसलिए इसको जानिए, हमारा सिद्धांत ये प्रभुपाद लिख रहे हैं वो दोनों है, निराकार भी है साकार भी है। लेकिन किससे कौन आता है? अच्छा, निराकार से साकार क्यों नहीं आ सकता? जैसे कोई कोई इंस्टीट्यूशन है भारत में, वो कहते हैं आप लोग गोलो गोलो की बात करते हो, आप अगर उनकी प्राप्त भी कर लोगे धन्यवाद। हमारे बच्चे इस मामले में तो कभी झूठे नहीं होते, बाकी सारे मामले में झूठे होते हैं, लेकिन इस मामले में कभी झूठे नहीं। और हम आपको गारंटी देते हैं कि आगे भी बढ़ेंगे। इतना बोलने की बात है। ओके, सो निराकार से साकार या साकार से निराकार? तो निराकार से क्यों नहीं आ सकता साकार? कुछ लोग कहते हैं, जैसे बता रहे थे आप लोग गोलोक गोलोक बात करते ना, आप लोग केवल गोलोक तक पहुंचोगे और हम लोग वहां से आपको टाटा बाय बाय करके ब्रह्मयोग के लिए चले। तो साकार या निराकार बताइए, इससे क्या आता है? निराकार से क्यों नहीं आ सकता साकार? वो तो एक्चुअली जो निराकार रूप है वो कह रहे हैं कि मुझसे सब कुछ आता। और वो क्या कह रहे हैं, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा, जो ब्रह्म है उसका, जो ब्रह्म ब्रह्मज्योति नहीं, जो ब्रह्म भगवान है उसकी मैं प्रतिष्ठा हो, मुझसे आता। दरअसल निराकार भगवान कह रहे हैं कि भगवान मुझसे आता। कैसे?
सूर्य से प्रकाश आता है, प्रकाश से सूर्य
निकलता है। बहुत अच्छा, मैं कोई उदाहरण नहीं है इस जगत में, देख सकते हैं कोई चीज आप देख लीजिए कि जहां निराकार से साकार आता हो ही नहीं सकता। साकार से निराकार आता, सूर्य आकार का है तो किसी भी चीज को आना है तो कोई तो सोर्स होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। तो इस जगत में एक उदाहरण बताइए जिसमें निराकार से साकार आता। अच्छा, केवल सूर्य नहीं था, केवल किरण थी और किरण से सूर्य प्रकट हो गया। किरण आएगी कहां से जब तक सूर्य नहीं होगा? और सूर्य हमेशा रहेगा, चाहे आपके यहां अंधेरा भी हो जाए, सूर्य है। किरणें हो सकता है ऐसा एक दिन आ जाए कि किरणें नहीं हो, सूर्य तो रहेगा। लेकिन किरण है तो इसका अर्थ सूर्य होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
यह नहीं मान बैठना चाहिए कि क्योंकि हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः वो भगवान साकार नहीं है। ईश्वर की तरह तो ईश्वर की संध्या घोषणा करके इस तरह का प्रयास करता है कि भगवान बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। भगवान का नाम भौतिक आकाश से बड़ा है और हमारे पास इस भौतिक आकाश को भी मापने के साधन उपलब्ध नहीं है। यदि भौतिक आकाश ही इतना दूर का दूर तक विस्तृत है तो फिर आध्यात्मिक आकाश के विषय में क्या कहा जा सकता है जो इससे सर्वथा परे है? आध्यात्मिक आकाश पर एवं भौतिक प्रपंच से अति दूर स्थित होने की पुष्टि भगवद्गीता 15.6 में की गई है, लेकिन इतनी दूरी पर रहते हुए भी भगवान एक पल से भी कम समय में मन या वायु से भी तेज गति से हमारे समक्ष तुरंत अवतरित हो सकते हैं। वे इतनी तेजी से दौड़ भी सकते हैं कि कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। इसका वर्णन पिछले श्लोक में किया जा चुका है।
यस, तो यहाँ अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। अब जो हम लोगों ने सुना तदेवली तदेवली तदूरे तदअंतिके इत्यादि, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि वर्णन क्या किया गया है कि भगवान चलते हैं, तदे चली और फिर तम नहीं चली, वो नहीं चलते, तो कैसे समझेंगे इसको? जो चलता वो चलना चाहिए, जो नहीं चलता, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो दिया गया है, भगवान जब ब्रज में थे तो वो चलते थे। ब्रज की भूमि पर आज भी उनके चरणों में चिन्ह दिखाई देते हैं, तो वो चलते हैं। पृथ्वी पर थे तो चले भगवान, सही है। और तदे यदि तब नहीं चलि, जब वही भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं तो नहीं चलते हैं, कभी कभी चल भी लेते हैं, साक्षी व्यवहार की कथा, लेकिन साधारणता वो नहीं चलते, ठीक है। तो भगवान ही है जो अर्च विग्रह है इनमें और भगवान में क्या अंतर है? कोई अंतर, बहुत अच्छा, कोई अंतर नहीं, ये भगवान ही है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भगवान शायद इसमें प्रवेश करेंगे इत्यादि। जब विग्रह स्थापित किए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उनमें भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान अपना विस्तार कई रूपों में करते हैं। प्रमुख जो उनके विस्तार हैं वो पांच रूपों में होते हैं। पहला परम, परम मतलब जो आध्यात्मिक जगत में भगवान कहते हैं तो परा रूप कहते हैं। परम मतलब हमारे चिंतन से परे, तो वो परा रूप कहलाता है, परा। और दूसरा जब भगवान व्यूह रूप में आते हैं, वही भगवान चतुर्व्यूह रूप लेते हैं। चतुर्व्यूह जानते हैं आप, भगवान ने जो चतुर्व्यूह भगवान से आते हैं कौन है चतुर्व्यूह में? सदर्शन और वासुदेव, ठीक। तो व्यूह ये दूसरा उनका विस्तार। तो पहला हो गया पर रूप मतलब जो अपने आध्यात्मिक धाम में अलग अलग रूप में रहते हैं, फिर व्यूह रूप में आते हैं और फिर वही भगवान अवतार लेते हैं, तो ये उनका तीसरा रूप है। तो पर रूप, व्यूह रूप, अवतार रूप और फिर अंतर्यामी रूप। अंतर्यामी मतलब जो हमारे हृदय में विराजमान है, हृदय में राज्य अंतर्यामी। अब इन चारों रूपों में से आप किनको देख सकते हैं? परह रूप देख सकते हैं जो गोलोक में समय है, व्यू को देख सकते हैं, अवतार को देख सकते हैं हर समय, अंतर्यामी। इसीलिए इन चारों की शक्ति भगवान विग्रह में देते हैं, पांचवां का स्वरूप है। तो चारों की शक्ति विग्रह में आती है जिसके हम दर्शन कर पाते हैं। तो क्योंकि हमें भौतिक तत्वों के दर्शन की आदत है या हम केवल भौतिक चीजें ही देख सकते हैं, तो भगवान अपने आप को भौतिक शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं, तो वो विग्रह कहलाते हैं जिनको हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। लेकिन विग्रह भी अपने मन से नहीं बनाए जा सकते। भागवतम में वर्णन है कि केवल कुछ चीजों के द्वारा बने गए विग्रहों को प्रमाण माना गया है, बाकी नहीं। जब भगवान 11वें स्कंद में भगवान ने बड़े विस्तार से विग्रह सेवा का वर्णन किया, कैसे विग्रह सेवा होनी चाहिए, उसमें एक उन्होंने वर्णन किया है। आप लोग आगे चलकर अगर मंदिर बनाएं तो ध्यान रखिए 11वां स्कंद पढ़ लीजिएगा जहाँ विग्रह सेवा का वर्णन है, तो उसमें कई चीजें दी। जैसे भगवान ने कहा मम पर्वानुमोदनम, मेरे जितने भी पर्व हैं उत्सव हैं वो मनाने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि इच्छा हो तो मना लेना। मम पर्वानुमोदनम बहुत स्पष्ट कहा भगवान ने, उनसे संबंधित जितने उत्सव हैं जैसे हम लोग रामनवमी जन्माष्टमी जो, तो उसको अपनी पूरी शक्ति से मनाना चाहिए। सेवा अपराध की सूची में एक अपराध ये है कि अगर हमारी क्षमता है उत्सव मनाने की और हम नहीं मनाते हैं तो एक अपराध। जिसकी क्षमता नहीं है वो खिचड़ी खिलाए, लेकिन जिसकी क्षमता है उसको फीस खिलाना चाहिए, सजाना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। अरे कौन करेगा, सब लोग डिसाइड किए कि अच्छा कल रामनवमी है तो हम लोग बड़ा फीस्ट बनाएंगे। अरे कौन बनाएगा, तुम्हारे इतनी मेहनत खिचड़ी खिलाओ क्या करनी है, तो ये अपराध माना गया है। अगर हमारी क्षमता क्षमता नहीं है, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम पानी पिला रहे कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर क्षमता है तो ये उसमें एक और चीज भगवान ने कही कि मेरा जहाँ मंदिर बने उसके सामने बगीचा होना अनिवार्य है और वो फूल मुझे अर्पण करने चाहिए। ये खुद भगवान ने कहा, इसलिए कह रहे मंदिर बनाने के पहले ध्यान स्पर्श जरूर पढ़िएगा उस सक्षण, ताकि आप उसके अनुसार बना सकें। तो ये सारी चीजें भागवत में दी गई है कि किस और विग्रह किससे बनते हैं वो भी दिया गया है। पत्थर के हो सकते हैं, लकड़ी के हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, ये अलग अलग चीजें 8 प्रकार की चीजें दी गई हैं जिसके विग्रह बनते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख कर भगवान के विग्रह बनाए जाते हैं। इसीलिए कई बार एक बार हमसे किसी ने कहा कि आप लोग मूर्ति पूजा में क्यों विश्वास करते हैं, हमने कहा हम बिल्कुल मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मंदिर बना रखे हैं, मूर्तियाँ लगा रखी है, हम तो हमने कहा बिल्कुल मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, हम तो विग्रह सेवा में विश्वास रखते हैं। ये हमारे लिए अर्च विग्रह है, मूर्तियाँ नहीं है। मूर्तियाँ कौन सी होती हैं जो शास्त्र के नियम के अनुसार नहीं बनाई गई हैं। बम्बई में गणेश उत्सव होते हैं, गणेश जी को क्रिकेट का बैट हाथ में पकड़ा कर बना दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर, ये अपराध है, इसको मूर्ति कहते हैं जो हमारे मन से बनाई गई है। लेकिन हम विग्रह सेवा करते हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम सेवक हैं, विग्रह सेवा, अर्च विग्रह की सेवा। सॉरी जी, हाँ विग्रह प्रकट होते हैं। तो अच्छा, तन्ने जति समझ में आया आपको, तन्ने जति मतलब क्या है, वो सकते हैं तो उदाहरण दे सकते हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आएगा ऐसा नहीं कह रहे। तो भगवान चलते भी हैं और भगवान नहीं चलते, चलते जति तन्ने जति। दूसरा क्या है, तदूरे तदुअग्निये, ऊपर देखिए नेक्स्ट पर, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तदूरे मतलब वो अपने धाम लोक में निवास कर रहे हैं, और रोकर जाकर समझा रहे हैं भौतिक जगत कोई पार नहीं कर सकते, वो लोग समझना तो भूल जाओ, दूर बहुत दूर, कितनी दूर है, बहुत दूर है। लेकिन तदुअग्नि के बहुत निकट भी है, जैसे नहीं अच्छे ऊपर परमात्मा के रूप। तो पहले जो तन्ने यदि नीचे है कि भगवान चलते भी हैं और नहीं चलते, भगवान दूर भी हैं और भगवान पास भी हैं। कैसे पास हैं, वो परमात्मा के रूप में है, या इन विग्रह को भी उसमें भी ले सकते हैं कि भगवान विग्रह के रूप में हैं, तो वो भी एक हमारे निकट हैं भगवान। और दूसरा क्या है उसके बाद, हरिनाम, हाँ क्योंकि भगवान के रूप में भी आते हैं, तो निकट है उसमें परमात्मा आ सकते हैं, अर्च विग्रह आ सकते हैं, या अवतार, जब अवतार इस पृथ्वी पर रहते हैं और उस समय जो लोग हैं उनके तो बहुत निकट है, जैसे जब कृष्ण थे, रामचंद्र जी थे, तो सारे लोगों के बड़े निकट थे, वो भी आ सकते हैं। दूर में वो लोग में रहते हैं, या कहना चाहिए हमारी चेतना के अनुसार भगवान दूर है। महाप्रभु ने कहा मन पूरा वृंदावन, अगर आप अपने मन को वृंदावन बना ले तो कृष्ण दूर नहीं है, तो हमारी चेतना के अनुसार वो हमसे दूर रहते हैं, ठीक है। और चलते हैं और नहीं भी चलते, अंदर है परमात्मा के रूप में समझ चलते हैं, ठीक है परमात्मा को, तो अंदर है वो परमात्मा के रूप में है, अंदर यानी हृदय में विराजमान है, और बाहर आध्यात्मिक जगत में है। तो अवतार का ऊपर वर्णन किया गया, कैसे वहां पर वो जब अवतार के रूप में रहते हैं, और उस तरफ जो वर्णन है वो चेतना का है कि कैसे हमारी चेतना के अनुसार वो हमसे दूर रहते हैं। अगर किसी की भौतिक चेतना या भोग करने की चेतना इत्यादि है तो उससे भगवान दूर है। तो ऊपर चेतना का वर्ण भी है, चेतना एक ऐसे निकट भी है, दूर भी है, और यहाँ पर बाहर भी है, अंदर भी है, चलते हैं और नहीं चलते, ठीक है। ओके आगे बढ़िए। हाँ जी, बाहर मतलब जैसे गोलोक में है या अपने धाम में है, हमारे से दूर है, हमारे से बाहर। अंदर परमात्मा के रूप में है, बाहर या तो कभी कभी अवतार के रूप में या फिर अपने धाम में हो रहे। ओके पढ़िए इसको आगे।
शक्ति उनमें नहीं हो सकती,
मगर ये भी माना जा रहा है कि भगवान का शरीर जब कहते हो आप लोग आते भौतिक, तो भगवान उस भौतिक तत्व में क्यों प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर शक्ति है, वो भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे देते माइक का, प्रवचन करते करते वो कहते थे माइक है, माइक्रोफोन ये भौतिक है, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहा है ये आध्यात्मिक हो गए। तो आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर क्या है शक्तियों में? जब भौतिक चीजों को, भौतिक तत्वों को पूर्णतः कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किया जाता है वो आध्यात्मिक हो जाता है, उनमें वो भौतिक नहीं रह जाते। इसीलिए सन्यासियों के शरीर को जलाया नहीं जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका शरीर पूर्ण आध्यात्मिक, उसको जलाने की जरूरत नहीं। साधारण व्यक्ति के शरीर को क्यों जलाया जाता है ये मानते हुए कि भौतिक तत्व है, भौतिक तत्वों के लिए होने चाहिए, लेकिन सन्यासियों के शरीर को नहीं जलाया जाता, ठीक है? तो आध्यात्मिक माना जाता है। तो यहाँ पर यही है, भगवान क्यों नहीं कर सकते ये विग्रह, क्यों आध्यात्मिक नहीं हो सकता? क्या भगवान के अंदर इतनी शक्ति नहीं है? उन्हीं की शक्ति है दोनों, वो चाहे तो इधर से उधर कर सकते हैं। आपके घर में एक ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, एक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज में जाती है, दूसरी हीटर में जाती है, और दोनों अलग अलग काम करती हैं। आप जब चाहें उसको बदल सकते हैं, आप जब चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी आप प्लग निकाल के फ्रीजर का कहीं और लगा सकते हैं। तो जो शक्ति आपको चाहिए आप दे सकते हैं, आपके घर में शक्ति एक ही है, कार्य अलग अलग करती है। इसी तरह भगवान की शक्ति एक ही है, कार्य अलग अलग करती है, और भगवान जब चाहें इधर उधर घुमा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि शक्तियों का स्रोत एक ही है, अतएव शक्तियों को उनके स्रोत के इच्छानुसार काम में लाया जा सकता है। उदाहरण, भगवान अर्च विग्रह में अर्थात मिट्टी पत्थर या लकड़ी के बने विग्रह के रूप में प्रकट हो सकते हैं। लकड़ी पत्थर या अन्य पदार्थ के बने अर्च विग्रह मूर्तियां नहीं है। देखिए अभी हमने आपको कहा ना हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं जैसा कि मूर्ति भजक भंजक तर्क करते हैं या मूर्ति की पूजा करना, ठीक है? हम लोग कहते हैं आप लोग मूर्ति हम तो नहीं करते, तो सीधे कहते हैं कोई हमसे कहे आप मूर्ति पूजा तो बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो करनी चाहिए बिल्कुल नहीं, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम लोग वही कह रहे हैं ये जो लकड़ी पत्थर पदार्थ के बनी अर्च विग्रह मूर्तियाँ नहीं है, ध्यान रखिए। अब आप लोग धीरे धीरे कहना बंद कीजिए, कई बार भक्त भी हम भक्त लोग कहते भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है, तो ये चेतना को बदलना शुरू कीजिए। भौतिक जगत की हमारी वर्तमान अपूर्ण बद्ध अवस्था में हम अपनी अपूर्ण दृष्टि के कारण परमेश्वर को नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त ने भौतिक दृष्टि के द्वारा देखना चाहते हैं उन पर अनुग्रह करके भगवान ने तथाकथित भौतिक रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। तो विग्रह का उद्देश्य क्या है यहाँ पर दिया गया है? पहला उद्देश्य क्या है? जो भगवान को देखना चाहते हैं अपनी भौतिक दृष्टि के द्वारा उनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा, सेवा स्वीकार करने के लिए। आप भोग लगाना चाहते हो भगवान को, ग्राउंड में खड़े हो जाओ आकाश में फेंको भगवान, कहाँ भोग लगाएंगे? सेवा कहाँ स्वीकार करेंगे? ड्रेसिंग करना है, निराकार है, कहाँ ड्रेसिंग करेंगे? तो भगवान सेवा स्वीकार करने के लिए इस रूप में आते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ऐसे भक्त जो भक्ति की निम्नतम अवस्था में है वे किसी मूर्ति की पूजा करते हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं मूर्ति पूजा आप लोगों के लिए, उनके लिए आप लोग ज्ञानी नहीं हुए, ज्ञानी हो जाओ उसके बाद ये सब छोड़ देना। नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए वस्तुतः वे भगवान की ही पूजा करते हैं जो उनके समक्ष ऐसे उपग्रह रूप में प्रकट होने के लिए सहमत हो गए, जिस तक सबको पहुंच हो सके। न ही अर्चक स्वरूप को पूजक की सनक के अनुसार गढ़ा जाता है, ये ध्यान दीजिए। अर्चक विग्रह हमारी सनक में हमें अच्छा लगा, अगर कृष्ण टेढ़े खड़े तो सीधा खड़ा करना चाहिए, अच्छा नहीं है ना भगवान टेढ़े, इसलिए हमारे सारे प्रोसेस ही टेढ़े हैं। भगवान ही टेढ़े, हमारे महाप्रभु भी टेढ़े खड़े रहते, इसीलिए खड़े भी होते हैं। इसीलिए रात को 12 बजे प्रकट हो जाता है, दिन में हो जाते उपवास कम होना पड़ा, रात को 12 बजे प्रकट हो। बाकी सब अच्छे हैं, रामचंद्र जी दोपहर 12 बजे ज्यादा नहीं टेंशन, महाप्रभु ने थोड़ा सा क्योंकि कृष्ण का असर था इसीलिए 7 बजे तो चले गए। हाँ, तो ये अपने सनक के अनुसार नहीं गढ़ा जाता, तो भागवतों के 11वें स्कंध में दिया गया है उसके अनुसार इसको गढ़ा जाता है। तो इसको हमेशा ये जानना चाहिए हमें कि हम इसको अपने मन से नहीं गढ़ सकते। तो भागवत के 11वें स्कंद के 27वें श्लोक के 27वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्च विग्रह के 8 श्रेणियां कौन सी हैं उसको दिया गया है। 11वां स्कंद 27वां अध्याय 12वां श्लोक जिसमें दिया गया कि कैसे हम किस तरह से गढ़ा जाता है। यह स्वरूप अपने साथ समान के साथ शाश्वत तौर पर विद्यमान रहने वाला है। इसकी वास्तविक अनुभूति निष्ठावान भक्त के द्वारा ही की जा सकती है, नास्तिक द्वारा
नहीं।
नास्तिक को पत्थर दिखाई देगा। किसी ने किसी नास्तिक ने कहा पत्थर पूछे हरी मिले तो मैं पूछू पहाड़, है ना, याद है ना आपको, क्या नाम नहीं देख रहे किसी ने कहा पत्थर मुझे हरे मिले तो मैं पूजू पहाड़, उसको बोलो जाकर पहाड़ पूजे गोवर्धन पर्वत हरे मिल जाएंगे निश्चय, वो भी सही है। तो उनका कहना क्या है कि आप लोग पत्थर पूजते हो, पत्थर पूजे तो पहाड़ पूजूंगा हरे मिल जाएगा, तो अर्थात की मूर्ति पूजा वगैरह सब बेकार है। वो भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि नास्तिकों के लिए भगवान प्रकट ही नहीं होते उनके सामने, उनके सामने पत्थर ही है। लेकिन जिनको भाव है, जिनको प्रेम है, जैसे कि साक्षी गोपाल की कथा में हम लोग देखते हैं, उसको विश्वास था। ब्राह्मण ने ये नहीं सोचा कि ये तो लकड़ी है, ये तो पत्थर है, ये तो क्या बताओ, उसको विश्वास था कि मैं भगवान के सामने वचन दे रहा। अभी हम जब आए थे तो कुछ राधे चरण किसी से बात कर रहे थे, तो भगवान के सामने बोलो ऐसे कुछ हमने सुनाई दिया, उसको बोल रहे थे भगवान के सामने बोलो, तो मतलब जो बोलना है अगर भगवान के सामने बोला है तो झूठ नहीं हो सकता, राइट। बाहर जाकर
नहीं बोलना,
नहीं बोलना, हमें लगा कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना, बाहर जाकर जो मन में आए बोल सकते। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कुछ तो भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो, मतलब बाहर ही भगवान है, भक्त तो भगवान को हटेगा देखता है फिर वो झूठ कैसे बोल सकता है, केवल भगवान के सामने नहीं तो। लेकिन फिर भी क्योंकि बाहर भगवान नहीं देख रहे या देख रहे इसलिए कम से कम भगवान के सामने झूठ नहीं बोल रहे। और ये नियम भी है विग्रह के समक्ष जो कहा जाता है फिर उसको झुठलाना नहीं चाहिए। तो अगर हम विग्रह के समक्ष कह देते हैं ठीक है हमारे संदेह बिना चुके आएंगे तो आना चाहिए, अगर हम कह देते हैं कि हम सेवा में लगेंगे तो लगना चाहिए, फिर ये नहीं कि यहाँ से बाहर चले गए बोल दो ठीक है हो गया हो गया। भगवद गीता में भगवान इंगित करते हैं कि वे भक्त से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह उसकी शरणागति की मात्रा पर निर्भर करता है। तो जितनी हमारी शरणागति होगी उतना भगवान व्यवहार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम, भगवान कहते हैं जितनी आपकी शरणागति उस अनुसार मैं व्यवहार करूँगा। अर्थात आप मेरे पास दो कदम चल कर आओगे तो मैं भी आपके पास 100 कदम चल कर आओगे। हमारी तकलीफ ये दो कदम ही नहीं लेना चाहते, हम ये चाहते हैं भगवान की इच्छा हो तो अपने आप 100 कदम लेकर आ जाए, मेरी कोई इच्छा नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप अगर इन्हें पत्थर मानोगे धातु मानोगे तो वो धातु के समान ही प्रकट होंगे, है ना। और आज अगर आप उन्हें आप धातु नहीं मानोगे भगवान मानोगे तो भगवान की तरह प्रकट। आज अगर आप लोग राधा श्याम सुंदर के दर्शन करें यहाँ पर जो है तो आप देखिए राधा रानी ने थोड़ा सा मुंह उस तरफ कर लिया, कुछ भी कर दिया दादा हो गया शायद हम लोगों से नाराज होंगे, उधर नहीं देखना ये हमने बोला कृष्ण को देखना, वो समझा रहे हैं कि कृष्ण को देखना जीवन की पूर्णता है, इधर उधर और नहीं देखना चाहिए। यह अधिकार वे अपने हाथ में रखते हैं कि शरणागतों के अतिरिक्त किसी और के समक्ष प्रकट हो या ना हो। तो ऐसा नहीं कि भगवान किसी अपराधी या किसी अधर्मी के सामने प्रकट नहीं हो सकते, ये नियम नहीं है, उनकी इच्छा है। अगर वो चाहे तो प्रकट हो जाएंगे किसी अधर्मी के सामने, दुर्योधन के सामने उन्होंने विश्वरूप दिखलाया, दुर्योधन कौन सा भक्त था, वो तो अरेस्ट करने का प्रयास कर रहा, तो भगवान ने दिखाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल भक्तों के सामने प्रकट होंगे और किसी के सामने भी हो सकते और किसी के सामने भी नहीं हो सकते। आप सर्व युक्त रहो भगवान क्यों आएंगे आपके सामने, तो ये यहाँ कहा गया। इस प्रकार शरणागत जीवों के लिए वे सदैव लगते हैं, परंतु शरणागत नहीं हुए जीवों के लिए वे अति दूर और गंभीर। तो यहाँ पर जैसे बहुत निकट और बहुत दूर, तो ये एक और उदाहरण हो पाते हैं। जो शरणागत भक्त है जैसे हमने चेतना का वर्णन किया, उनके लिए बहुत निकट है मन मोरा वृंदावन, लेकिन जो शरणागत नहीं है उनके लिए बहुत। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्द सगुण और निर्गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सगुण शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि मतलब ये नहीं होता कि जब ये दृष्टिकोण गोचर गुणों से सही प्रकट होते हैं तो वे भौतिक रूप ग्रहण करते हैं, भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन रहते हैं। उनके लिए भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में अंतर नहीं होता क्योंकि वे समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। समस्त शक्तियों के नियंत्रक के रूप में वे हमारी तरह कभी भी उनके वश में नहीं हो सकते। भौतिक शक्ति उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, अतः उस शक्ति को अपने कार्य के लिए शक्ति की किसी भी गुण के प्रभावित हुए बिना प्रयोग कर सकते हैं। भगवान प्रभावित नहीं होते भौतिक शक्ति से, इसीलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। तो सगुण और निर्गुण क्या है? सगुण अर्थात उनके अंदर सारे गुण है, निर्गुण अर्थात उनके अंदर एक भी भौतिक गुण नहीं, उसको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण का तो ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं, न ही भगवान कभी निराकार होते हैं क्योंकि अंततो गत्वा वे शाश्वत रूप तथा आदि भगवान हैं। उनका निराकार पहलू या ब्रह्म ज्योति उनके व्यक्तिगत किरणों की चमक मात्र है। चर्चा की भगवान के शरीर से कांति निकलती है तो व्यक्तिगत चमक मात्र है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्यदेव की चमक है। ठीक है, जब बालक शब्द, अच्छा आप लोगों से कोई पढ़े पढ़ना शुरू कर दिया तो भूल गया कि आप लोग
आखिरी
पहले इसको कंप्लीट कर दें।
तो
बाहर और भीतर का हो गया, अंतर्यामी रूप में बाहर अंदर है, विराट रूप में बाहर, विराट में नहीं जगह देख रहे भगवान का विराट।
अंतर्यामी रूप में वे घटित होने वाली प्रत्येक घटना के साक्षी हैं और हमें अपने कर्मों का फल प्रदान करते हैं। भले ही हम भूल जाएं कि हमने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया था, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे कार्यों के साक्षी हैं, अतः हमारे कर्मों के फल सदैव मिलते हैं और हमें उन फलों को भोगना होता है। तथ्य तो ये है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु उनकी विवेक शक्ति को अदा करते हैं। जिस तरह अग्नि से ताप तथा प्रकाश उद्भूत होती है, इस तरह उनकी विवेक शक्ति में एक रूपल है। इस एक रूपल के होने पर भी भगवान अपने व्यक्तिगत रूप में उन सब वस्तुओं को पूर्ण रूप में भोगते हैं जो उनके अंश और जीवों द्वारा पुरुष मात्रा में भोगते हैं।
भगवान सारे कार्यों के भोक्ता भी है और देख भी रहे हैं। कहा है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमने क्या किया कुछ जन्म, लेकिन भगवान सब याद रखते हो। गया कुछ और बाकी है? हाँ, अग्नि और तो जिस तरह अग्नि से ताप और प्रकाश निकलता है, दोनों में एकता है। अग्नि है मतलब ताप और प्रकाश है, इसी तरह भगवान से जीव निकलते हैं, दोनों में एकता है। जैसे अग्नि से क्या निकल रहा है, ताप और प्रकाश, बिना अग्नि के निकल नहीं सकता, तो इसी तरह भगवान से जीव निकलते हैं। तो एकता हमारी एकत्व जो है वो गुणों में, जिस पर बहुत बता रहे स्पार्क होता है उसमें भी वही अग्नि रहती है, लेकिन उसमें बहुत छोटी मात्रा होती है, तो गुणों में हमारी समानता है। ठीक है, तो ये पांचवा मंत्र समाप्त हुआ। अब अगले मंत्र में, छठे मंत्र में ऐसे वर्णन है उस व्यक्ति का जो कृष्ण को हर जगह देख सकता है। जब महाभारत के दृष्टिकोण प्रारंभ हो गया तो अभी तक देखा कि कैसे अंदर बाहर सब भगवान अचिंत्य हैं, अब कैसे हर जगह भगवान को जो देखता है उसका वर्णन आने वाला है। तो उसमें तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन आएगा, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, और वो हम लोग कल आप लोगों से सुनेंगे। राइट, तीन आप लोगों के लिए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कल आपको वो स्पष्ट समझाना है, तो तात्पर्य अपने सामने हम नहीं समझाएंगे कनिष्ठ मध्यम। ठीक है, तो आप लोगों को समझाना है और हम फिर सीधे सातवां मंत्र प्रारंभ करें। उसमें वही है, कनिष्ठ मध्यम उत्तम उतना ही समझाया है, तो आप लोग समझा दो सीधे सातवां मंत्र प्रारंभ करें। ठीक है, कोई प्रश्न किसी के? कृष्ण के बिना पता भी नहीं लगता। वो अच्छा, हाँ, समय है, आप लोग सुनना चाहते हैं या आप लोग कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, अभी समय है, वैसे हमें 9:30 का समय दिया गया था, तो सवा हम लोग चर्चा करना चाहते हैं बहुत संक्षेप में। जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, जीव की स्वतंत्रता, भगवान का क्या रोल है और प्रकृति क्या करती है, और हमें प्रकृति भोगना पड़ता है। कल उदाहरण दिया ना आपको, मर्डर कोई और करता है, धमाका कोई और है और दंड किसी और, तो हमारी स्वतंत्रता है या नहीं? तो पहले सिद्धांत ये है कि जीव इच्छा करता है, दंड इसलिए भोगना पड़ता है, जीव इच्छा करता है। भगवान का क्या रोल है? भगवान अनुमति देते हैं, केवल आपकी इच्छा होने से सब कुछ पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए अनुमति चाहिए। इसीलिए कहते भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं होता। लेकिन भगवान इच्छा नहीं करते, इच्छा जीव करता, भगवान अनुमति देते। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, तेरहवें अध्याय में भगवद गीता के बताया गया है कि जो परमात्मा क्या करते हैं, उपदृष्टा अनुमंता अनुमति देते। तो जीव इच्छा करता है, भगवान अनुमति देते हैं, प्रकृति कार्यान्वित करती है। इसीलिए भगवान को दंड नहीं मिल सकता क्योंकि भगवान प्रकृति के गुणों के परे है। प्रकृति को दंड नहीं मिल सकता क्योंकि प्रकृति केवल भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। जीव इच्छा करता है इसलिए इसको दंड भोगना। तो इच्छा जीव की है क्योंकि हमने इच्छा कर दी, इसीलिए हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। हालांकि हम वो कार्य कर नहीं रहे, लेकिन क्योंकि इच्छा के कारण हम अपने आप को उस कार्य से संबंधित मानते हैं। जैसे शरीर है, ये हम है नहीं, लेकिन हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, इसलिए हम शरीर के परे अपने आप की कोई पहचान नहीं जान पाते। तो क्योंकि हमारी गलती है इसीलिए। तो हमारे फ्री विल की बात आती है कि अगर सब कहा जाए कि सब कुछ निश्चित है तो फिर हमारा स्वतंत्रता कहाँ गई। तो ये जान लीजिए, इस जगत में सब कुछ निश्चित नहीं है, ये बहुत स्पष्ट है। ये जो कहना कि सब कुछ लिखा हुआ है, ये गलत है, बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों में। अगर सब कुछ निश्चित होता तो भगवत गीता कहने की क्या जरूरत थी कृष्ण को? निश्चित है ना, आप भगवत गीता सुनो, ईशोपनिषद सुनो, कुछ भी सुनो, करने वाले वही हो, तो फायदा क्या? तो कृष्ण क्यों आपके भगवत गीता कहे, शास्त्र कहे, आचार्यों को भेजे? पहली चीज बहुत स्पष्ट जान लीजिए कि इस जगत में सब कुछ निश्चित नहीं, कुछ चीजें निश्चित हैं। जैसे हमारे सामने जो स्थिति आएगी वो हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार निश्चित, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन उस स्थिति में हम कैसे कार्य करते हैं, हाउ वी रिएक्ट टू द सिचुएशन इज नॉट फिक्स्ड, वो निश्चित नहीं। इसको उदाहरण देते हैं, मान लीजिए अचानक आपको 10 लाख रुपए मिल जाता है, अभी आपको मिलना नहीं था, मिल गया। ये कहा जाता है कि आपके कर्मों के अनुसार, ठीक है, आपको पिछले कर्मों के अनुसार कैसे मिल गया। उस 10 लाख का आप क्या करते हो ये निश्चित नहीं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप हो सकता है 10 लाख ले जाकर किसी कसीनो में चले जाओ, यहाँ तो नहीं गोवा में है, आपको बता रहे हैं, प्रेस चाहिए ले लीजिए। तो हो सकता है कि आप कुछ बोलिए, आपको कैसे मालूम, बाहर से देखा है, रोड ले जाते हुए देखता है। तो वो 10 लाख लेके आप किसी कसीनो में चले जाओ, उड़ा दो एक समय में, वो 10 लाख ले जाके आप किसी गरीब को दे दो, वो 10 लाख आप अपने भोग के लिए लगा लो, या वो 10 लाख आप मंदिर में दे दो, ये आपकी स्वतंत्रता। ये फिक्स नहीं है कि आप इस 10 लाख का यही करोगे। तो जीव के पास स्वतंत्रता है, कितनी सीमा में, जीव पूर्ण स्वतंत्र नहीं, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। वो स्थितियां बना भी सकते हैं और स्थितियों में कैसे एक्ट कर रहे हैं वो कर सकते हैं, हम स्थितियां बना नहीं सकते, ये हमारे कर्मों से होती है। 10 लाख रुपए मिलना ये कर्म है, उसका उपयोग करना ये हमारी स्वतंत्रता है। तो भगवान का क्या रोल आ गया इसमें? मान लीजिए कि हमें मिला, हमने जैसे एक्ट किया और जैसे आप करोगे वैसे आपको कर्म का फल मिलना, तो भगवान का कहाँ रोल आ गया? अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे कर्म फल मिलेंगे, बुरे कीजिए, बुरे कर्म फल मिलेंगे, भगवान की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? भगवान का रोल ये है कि भगवान आपकी जो स्वतंत्रता है उसको कैसे उपयोग करना है ये भगवान सिखा। हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसीलिए हम भगवान से विमुख हैं। और जो जीव भगवान के साथ उनकी निगाह में है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है। तो अपनी स्वतंत्रता को, जैसे आप 10 लाख रुपया मिला उसी उदाहरण में, अब उसका क्या करना है ये आपको भगवान समझाते हैं, शास्त्र समझाते हैं। तो आप अगर उसका पालन करते हो तो आप उसको अच्छे काम में लगाओगे जिससे कोई कर्म नहीं आएगा भगवान के काम में। लेकिन अगर आप नहीं पालन करते हो, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हो, तो फिर आप उसको ऐसे काम में लगाओगे जिससे आपको कर्म बंधन आएगा। तो इसीलिए कार्यों में हमें जानना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पे चला जाए और वहां से कूद जाए और फिर कूदते हुए चिल्ला बचाओ बचाओ बचाओ, गलती कर दी, मेरे को कूदना नहीं था, तो जोश में आ गया कूद गया, तो स्वतंत्रता कब तक है? कार्य करने से पहले। कार्य करने के बाद स्वतंत्रता नहीं है, फिर तो सर टूटेगा ही मरेगा ही, वो तो अलग बात है, कूद गया ऊपर से। लेकिन स्वतंत्रता कब है? कार्य करने के पहले तक हमारी स्वतंत्रता, सोचना करे या ना करे। मनुष्य जीवन इसीलिए प्राणियों से पशुओं से भिन्न है क्योंकि वो सोच सकता है, अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर सकता है। प्राणी नहीं करते हैं, जानवर नहीं करते हैं, उनकी स्वतंत्रता खाने पीने सोने में ही है, उससे परे स्वतंत्रता का उपयोग नहीं करते। तो इसीलिए हमारे लिए स्वतंत्रता भी है, हमारे पास हर एक के पास स्वतंत्रता, भगवान स्वतंत्रता नहीं देते। तो एक प्रश्न आता है, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी क्यों? हम गलत उपयोग कर रहे हैं ना उसका, इसीलिए तो असुर बने हुए। देते ही नहीं भगवान स्वतंत्रता, तो हम उनकी भक्ति करते केवल?
नहीं,
भगवान
से प्रेम करते
हैं, प्रेम करते हैं, स्वतंत्रता में प्रेम आता है। आपके सर पर बंदूक रख के बोलो मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? आप बोल के आपसे, आपके पिताजी से, आपके खानदान से सबसे प्रेम करता हूं, बताओ तो ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं, लेकिन आपको स्वतंत्रता दी जाती है, भगवान ने स्वतंत्रता दी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे दूर रहकर प्रसन्न रह सकते हो, जाओ देख कर आओ। और जब हम अपनी खुद की स्वतंत्रता से भगवान के पास जाते हैं, ये कहते हैं कि नहीं आपके बिना मैं सुखी नहीं रह सकता, तब भगवान कहते हैं ये सच्चा है, अब तुम्हें समझ। जैसे आज इस जगत में आप किसी को फोर्स करो, ये करना ही है, करना ही है, तो भगवान ने मार्ग दिए हैं प्रेम के प्राप्त करने के। अब क्या मार्ग दिए हैं? सुबह जल्दी उठना, 16 माला जप करना। आप बताइए इस जगत में आप किसी को प्रेम करते हो? लड़का लड़की के पास जाए, बोले मैं प्रेम करता हूँ, लड़की बोले 4 बजे उठो सुबह, मेरे नाम का जप करो, तब बोलोगे, तब लगेगा कि प्रेम करते, नहीं तो प्रेम नहीं करते। अब वो बेचारा सुबह से लौट के माला लेकर लड़की के नाम का जप कर रहा है 16 माला। ये कैसे भगवान ने नियम दिया प्रेम करते? अरे प्रेम करते तो बिना कोई नियम नहीं होना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं प्रेम कर रहे भगवान से, प्रेम के नियम कहाँ से आता? आप प्रेम करके आओ तो ये करो वो करो, नहीं तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी। प्रेम करने का अर्थ है कोई नियम नहीं। फिर हमारे लिए क्यों नियम है? क्योंकि हमारा हृदय तैयार नहीं है प्रेम करने के, अशुद्ध है, पहले उसको शुद्ध करना है, तैयार करना है, तब प्रेम होगा कृष्ण के प्रति। इसीलिए नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, ठीक है? तो स्वतंत्रता भगवान ने इसलिए दी है क्योंकि वो हमसे प्रेम करना चाहते हैं, हमें रोबोट्स नहीं बनाया है। चाहते तो भगवान सबकी स्वतंत्रता छीन लेते, हम लोग दिन भर बोलते रहते भगवान आपसे प्रेम है, भगवान आपसे प्रेम है। जैसे एक रोबोट बना दो, उसको प्रोग्राम कर दो, वो दिन भर आपको कहता रहेगा आप बहुत सुंदर है, आप बहुत सुंदर है। आप सुन सके पहले छोड़ दो उसको, थोड़ा दो क्या है सारा संपूर्ण टोटल, ये क्या बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें कोई भाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, उसको तो प्रोग्राम कर दिया गया। इसी तरह अगर भगवान आपका स्वतंत्रता को छीन लें तो आप केवल रोबोट्स हो जाओ, वो प्रेम नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने स्वतंत्रता, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कल